लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, आज माता कलिसिया के संग हम आगमन के प्रथम रविवार में प्रवेश करते हुए कलिसियाई पूजन विधि वार्षिक कालचक्र के नए साल की शुरुआत करते हैं। आगमन के काल में प्रवेश करना हमारा ध्यान एक विशेष घटना की ओर कराता है, जहां हम सभी अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के आने की राह देखते हैं। अतः आगमन, जिसका अर्थ आना है, हमें आने वाले के इंतजार में तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। हमारे मुक्तिदाता का आना हमारे लिए एक कृपा का समय है, और इसलिए माता कलिसिया अपने संतानों को एक विशेष तैयारी करने का निमंत्रण देती है, जिससे हम ईश पुत्र के आने पर उनके आगवानी करने में सच्चा आनंद का अनुभव कर सकें। आगमन के प्रथम रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का संदर्भ भी हमें तैयार रहने का आह्वान करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि मुक्ति दाता के आने की तैयारी हेतु मैं किस तरह एक व्यक्तिगत पहल करता हूँ।
जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें इस बात का एहसास दिलाए कि हमारे मुक्ति का समय निकट आ गया है, क्योंकि मुक्ति दाता हमारे बीच आने वाले हैं। अतः हम बड़ी तत्परता और सरगर्मी से उनके आने की तैयारी में अपने को संलग्न करें। नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के मंदिर का पर्वतों और पहाड़ों के ऊपर उठाए जाने की बात कहता है, जहां सभी लोग जमा होंगे और ईश्वर उन्हें अपने मार्ग में चलने की शिक्षा देंगे। यह हमारा ध्यान याहवे की चुनी हुई प्रजा की दूर दशा की ओर कराती है, जो बाबुल निवासन में गुलामी और अत्याचार के शिकार हैं। वे उस प्रतीक्षा में हैं कि उनके लिए ईश्वर का घर, जो उनके शत्रुओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था पुनः स्थापित किया जाएगा और वे अपनी गुलामी से छुटकारा पाते हुए अपने ईश्वर के उस निवास में प्रवेश करेंगे जहां वे उन्हें नए जीवन की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसराइली जनता हेतु मंदिर वह पुण्य और गरिमा का स्थल था जो उन्हें एक अस्तित्व और पहचान प्रदान करता था, लेकिन ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं रहने के कारण उनके जीवन की पहचान और गरिमा सारी चीजें मिटा दी गईं। अतः वे अपने लिए उस मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें बचाने आएगा और उन्हें पुनः स्थापित करेगा। रोमियों के नाम संत पौलुस अपने पत्र में विश्वासी समुदाय को नींद से जागने का आह्वान करते हैं क्योंकि मुक्ति की घड़ी निकट आ गई है। वे हमें आशा में बने रहते हुए तैयारी के अर्थ का मर्म समझाते हैं। वे हमें अंधकार के कार्यों, रंग रेलियों, नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहने का आह्वान करते हैं। वे हमें ज्योति के वस्त्र मसीह को धारण करने का आह्वान करते हैं। श्रोताओ, संत पौलुस का यह निमंत्रण हमारे लिए आगमन की तैयारी में अपने जीवन में परिवर्तन लाने की चुनौती प्रदान करता है। आगमन का समय हमारे लिए नवीनता का समय है। यह हमारे लिए अपने में पुराने जीवन का परित्याग कर नए जीवन को धारण करने का अवसर है। श्रोताओ, किसी भी सम्मानित और बड़े व्यक्ति का हमारे घर में मेहमान बनकर आने की स्थिति में हम अपने घर को यूं ही अस्त व्यस्त मैला कुचैला नहीं छोड़ते हैं। हम अपने में पुराने और फटे वस्त्रों को धारण नहीं करते, वरन अपने को सभी रूपों में तैयार करते, अपने को सुंदर और आकर्षक ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं। आगमन की तैयारी का यह समय हमें भी अपने में वैसे ही आंतरिक रूप में सुंदर और आकर्षक बनने का निमंत्रण देता है जिसके बारे संत पौलुस हमें आग्रह करते हैं। संत पौलुस अपने आह्वान में हमें अपनी बुराइयों का परित्याग करने का निर्देश देते हैं। यह हमारी बाह्य सफाई की अपेक्षा आंतरिक सफाई की चुनौती देता है। हम ज्योति की संतान हैं, अतः हमें अंधकार के सारे बुरे कार्यों से बाज आने का आग्रह किया जा रहा है। श्रोताओ, सुसमाचार हमें पुनः अपनी इस तैयारी पर बल देते हुए नूह के दिन की याद दिलाता है। यह हमें बेफिक्र होकर जीवन यापन करने से सचेत कराता है जैसे कि नूह के समय में हुआ। तैयारी का यह समय हमें अपने में सतर्क और सजग रहने की मांग करता है क्योंकि हम यह नहीं जानते कि मुक्तिदाता का आगमन हमारे लिए कब और कैसे होगा। सुसमाचार हमें इस बात से सचेत कराता है कि हम जिस घड़ी उनके आने की नहीं सोचते, वे उसी घड़ी हमारे बीच विराजमान होंगे। श्रोताओ, आगमन के प्रथम रविवार में प्रवेश करते ही बहुत बार हम अपने जीवन में भौतिक तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी बाह्य तैयारी की अपेक्षा हमारे मुक्तिदाता को हमारी आंतरिक तैयारी अधिक पसंद है। उनका आगमन हमें अपनी आंतरिक तैयारी के अनुरूप उन्हें देखने, पहचानने तथा उनके द्वारा मिलने वाली अनंत खुशी को अनुभव करने में मदद करेगा। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें सतर्कता में बने रहते हुए अपने पुत्र के आने की उचित और अच्छी तैयारी करने का सही ज्ञान हमें प्रदान करें जिससे हम उनके आने पर सच्चे अर्थ में आनंद की अनुभूति अपने जीवन में कर सकें।
मेरा जीवन मेरे लिए है तेरा उपहार प्रभु,
मेरा जीवन मेरे लिए है तेरा उपहार प्रभु।
जाने कितने करेगा
और जाने कितने करेगा
मुझ पर तू द्वार प्रभु, मेरा जीवन मेरे लिए है तेरा उपहार प्रभु, मेरा जीवन मेरे लिए है तेरा उपहार प्रभु। मेरा जीवन मेरे लिए है तेरा उपहार प्रभु,
मेरा जीवन मेरे लिए है तेरा उपहार प्रभु।
ओ न जाने कितने करेगा,
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अपने प्रवचन में नश्वर अंत मृत्यु पर चिंतन करते हुए उसे प्रभु से मुलाकात करने की घड़ी कहा, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के प्रेरित आवास संत मार्था में क्रिस्त्याग अर्पित करते हुए स्मरण दिलाया कि पूजन पद्धति वर्ष के अंतिम सप्ताह में कलीसिया हमें अंत पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करती है, जो दुनिया से हमारे जीवन का अंत है और हम सब समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि यह कब होगा, किंतु हम बहुधा उस विचार को छोड़ देते हैं और अपने आप को अमर मान लेते हैं, जो ऐसा नहीं है। हम सभी कमजोर हैं और यह कमजोरी हमें निश्चित बिंदु तक मृत्यु की ओर ले जाती है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि हम किस तरह डॉक्टर अथवा मनोवैज्ञानिक के पास शारीरिक और मानसिक चंगाई की खोज में जाते हैं। संत पापा ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, ऐसा बाइबल और सुसमाचार में लिखा गया है, किंतु प्रभु हमें इससे एक मुलाकात के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपने साथ मुलाकात और इसमें आशा शब्द को भी जोड़ देते हैं। मृत्यु एक मुलाकात है क्योंकि वे हमारे साथ मिलने आते हैं, वे ही हैं जो हमारा हाथ पकड़कर हमें लेने आते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रभु हम प्रत्येक के द्वार पर एक दिन दस्तक देंगे, अतः यह आवश्यक है कि हम उस पल के लिए अपने आप को तैयार रखें। संत पापा ने अंत में सभी विश्वासियों से कहा कि आप इसके लिए तैयार रहें, अपने मृत्यु पर चिंतन करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब प्रभु आएंगे तब हम भरोसे और साहस के साथ द्वार खोल सकेंगे। संत पापा ने भले मरण के लिए प्रार्थना करने का प्रोत्साहन दिया। संत पापा फ्रांसिस ने आगमन काल शुरू होने के पहले दिन विश्वासियों का आह्वान किया कि वे लोगों को ईश्वर के प्रेम की याद दिलाएं। उन्होंने 30 नवंबर को प्रकाशित ट्वीट संदेश में लिखा, कलीसिया का अस्तित्व है ताकि वह लोगों के दिलों में उस स्मृति को जीवित रख सके कि ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं। वह हर एक को यह बतलाने के लिए उपस्थित है, चाहे वह बहुत दूर क्यों न रहता हो, ईश्वर आपको नहीं भूलते, वे आपकी चिंता करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को विवाह की रक्षा एवं संकट में पड़े दंपतियों की प्रेरितिक देखभाल के लिए प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की। कोर्स का आयोजन रोता रोमाना के द्वारा किया गया था। उन्होंने उनसे कहा कि कलीसिया हमेशा विवाह की समस्याओं का सामना कर रहे दंपतियों की अच्छाई की खोज करती है। 30 नवंबर को कोर्स के प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कोर्स की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। कोर्स की विषय वस्तु थी विवाह की रक्षा एवं संकट में पड़े दंपतियों की प्रेरितिक देखभाल। उन्होंने कहा, आज विवाह की कठिनाइयां कई कारणों से उत्पन्न हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आदि। कई बार ये समस्याएं प्रेम करने में मानव हृदय के बंद होने के कारण उत्पन्न होती हैं। पाप के कारण हम सभी प्रभावित होते हैं। संत पापा ने कहा कि यही कारण है कि कलीसिया जब ऐसे दंपतियों से मुलाकात करती है तब वह सबसे पहले उनके साथ रोती और दुखित होती है। संत पापा ने गौर किया कि कलीसिया जीवन की ऐसी दुखद एवं पीड़ा भरी कहानियों के सामने कभी उदासीन नहीं होती। यही कारण है कि वह अपने कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में भी विवाह में समस्याओं का सामना कर रहे दंपतियों की अच्छाई की खोज करती है। उन्होंने सलाह दी कि जब कभी कलीसिया किसी पीड़ित दंपति से मिले तो उसे अपने आप को पौत्र आत्मा को समर्पित कर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा संचालित होकर वे सही उपाय पा सकें और उनकी जांच परख एवं न्याय कर सकें। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त दंपति जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं वे इस बात से पोषित हों और धीरे धीरे अपने आप को जागृत करें कि वे आदर्श ख्रिस्त दंपति बनने के लिए बुलाए गए हैं। धर्मदक्ष एवं पुरोहित जो दंपतियों को विवाह के संस्कार के लिए तैयार करते हैं वे उन्हें पल्ली समुदाय के जीवित और प्रेरितिक इकाई बनने में मदद दें। संत पापा ने याद दिलाया कि संत पौलुस के सहयोगी विवाहित संत अक्विला और प्रिसिला दाम्पत्य प्रेरिताई की बुलाहट के सुंदर उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया में पल्ली जो परिवारों का एक ठोस समुदाय है संत अक्विला और प्रिसिला के समान अपने क्षेत्र में सुसमाचार का साक्ष्य देने के लिए बुलाई जाती है। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने मैं समर्थ हूँ विश्व सभा के प्रतिभागियों से वैटिकन में मुलाकात की। संत पापा ने उन्हें संबोधित करते हुए कार्यों के प्रति उनके दैनिक समर्पण की तुलना मोजाइक कलाकृति से की। उन्होंने कहा कई छोटे छोटे कार्यों को एक साथ करने के द्वारा निर्मित सुंदरता मुझे मोजाइक कलाकृति की याद दिलाती है जिसमें एक तस्वीर का निर्माण करने के लिए कई छोटे टुकड़ों को एक साथ लगाया जाता है। पत्थर के इन छोटे टुकड़ों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता किंतु जब एक साथ मिलाया जाता है तब अत्यंत मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है। संत पापा ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि मैं आप में साहस निष्ठा को देखता हूँ। एक ठोस पर्यावरण और सामाजिक सुधार परियोजना के भरोसे एवं साहस को, एक ऐसी योजना को जो एक छाप छोड़ देती है। आपने सही चुनाव किया है। आपने अपने समुदाय की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। कुस्तुनतुनिया के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के संरक्षक प्रेरित संत अंद्रियास के पर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस ने प्राधिधर्मदक्ष बार्थोलोमियो प्रथम को एक तार संदेश प्रेषित कर शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने संदेश में लिखा, मैं महान आध्यात्मिक आनंद एवं विश्वास तथा प्रेम में गहरी एकता के साथ कुस्तुनतुनिया की कलीसिया से मिलकर उनके संरक्षक प्रेरित संत अंद्रियास के पर्व दिवस पर प्रार्थना में शामिल होता हूँ। वे यीशु द्वारा सबसे पहले बुलाए गए थे एवं संत पेत्रुस के भाई थे। संत अंद्रियास के पर्व दिवस पर हर साल रोम के कैथोलिक कलीसिया के प्रतिनिधि इस्तांबुल जाकर कुस्तुनतुनिया की ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया को अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। संत पापा ने कहा, प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं कैथोलिक कलीसिया और अपनी ओर से अटूट इरादे का आश्वासन देता हूँ कि हम पूर्व और पश्चिम के ख्रिस्तियों के बीच पूर्ण एकता को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। इस वर्ष कैथोलिक कलीसिया एवं ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के बीच ईश शास्त्रीय संवाद हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की 14वीं वर्षगांठ है जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से प्राधिधर्मदक्ष दिमेत्रियोस प्रथम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संत अंद्रियास के पर्व दिवस पर फनार में मुलाकात के दौरान की गई थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।